मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 5 मई 2016 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं स्नेहिल यादव जो इलाहाबाद से हैं और ओम प्रकाश प्रियदर्शी जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। तो स्नेहिल और ओम प्रकाश, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है जो खासकर करेंट कंटेंट को लेकर है, क्योंकि करेंट कंटेंट का जो सब टाइटल है वो हम लोगों ने अभी नया शुरू किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक आपकी इसके लिए आदत नहीं पड़ जाती तब तक मैं आपको डेली इस बात की याद दिलाता रहूं कि करेंट जो कंटेंट है उस पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि उस पर कुछ न कुछ आपको एक अलग तरीके से पढ़ने को चीजें मिलेंगी। और डेफिनेटली वो जो चीजें मिलेंगी वे सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, भले ही वो थोड़ी सी क्यों ना हो। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ तौर पर बता दूं मित्रों कि उसमें ज्यादातर जो चीजें होंगी वो खासकर करंट समय में अभी अभी जो अखबारों में छप रहा है और खासकर जो अंग्रेजी अखबारों में छप रहा है, जिसको लेकर के हिंदी मीडियम और जो रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं थोड़े से परेशानी महसूस करते हैं, उनकी मदद के लिए उन्हीं अंग्रेजी के अखबारों पर बेस्ड सामग्री ज्यादातर उपलब्ध कराई जाएगी। हो सकता है कि कुछ चीजें कंप्लीट पूरी तरह से भी उपलब्ध कराई जाएं, इसलिए मैं एक बात बहुत साफ तौर पर आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्रों कि इसमें कोई भी चीज अगर डाली जा रही है तो उसे आप पहली बात तो यह कि कंप्लीट न समझें जब तक कि वो एक आर्टिकल फॉर्म में न हो। यदि आपको लिखा हुआ नीचे मिलता है कि फलाने अखबार पर के लेख पर आधारित या फलाने अखबार के संपादकीय से सावधान, इसका मतलब है कि उसमें जो कहा गया है वो बात आपको बताई जा रही है। वो जो कुछ भी कहा गया है इसका मतलब यह नहीं कि एकेडमी कह रही है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि केवल यही सच है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जो जीएम फसलों पर कुछ पॉइंट्स आपको अवेलेबल कराए गए थे उस जीएम फसल के बारे में मेरे पास कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो प्लीज इस तरह की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो आप बिल्कुल बहुत सही हैं। आपको एक जो एनालिसिस करनी है वो जब तक क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक एनालिसिस नहीं हो सकती है। हर कोई अपनी अपनी बात कहता है। आपने देखा होगा कि उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख पर आधारित, यानी कि उस लेख में उस राइटर ने जो कहा है वो चीजें आपको बताई जा रही हैं। कितनी सही है, कितनी गलत है, पूरी तरह से गलत है, ये इवेलुएट करना आपका काम है और यही सच पूछे तो सिविल सर्विस की तैयारी भी है। तो इसलिए प्लीज उस पर जो भी आपके रिएक्शंस होते हैं आप अपने लेवल पर काम करें, आप अपने लेवल पर नोट करें, वो होना ही चाहिए। लेकिन जो इस पर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं वे चीजें पूरी तरीके से किसी अखबार के या किसी राइटर के उनके अपने विचार होते हैं, उनका आप लोग अपनी तरफ से इस्तेमाल करें। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मुझे आपको बताना था। दूसरी बात, जो उसमें प्रोवाइड की जा रही है ऐसा नहीं कि वो अपने आप में कंप्लीट है, मतलब अब उस टॉपिक पर आपको कहीं किसी तरह की कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। जैसे कल जीएम फसलों पर आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका जीएम फसलों पर तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे आज के करंट कंटेंट में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 है 356 उसको लेकर के कुछ आपको पॉइंट्स उपलब्ध कराए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने अगर उनको पढ़ लिया तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में या अनुच्छेद 356 के बारे में आपकी तैयारी पूरी हो गई, आपकी जानकारी कंप्लीट हो गई। नॉट एट ऑल। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय पर आधारित। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इस इश्यू पर अपना संपादकीय लिखा तो उन्होंने ये महत्वपूर्ण बातें कही। उसमें से बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम हो, बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए नई हो, लेकिन डेफिनेटली जो बातें कही गई हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंस इस बात में है कि अभी जो घटना घटी है टाइम्स ऑफ इंडिया उस घटना के संदर्भ में ये बातें कह रहा है। राष्ट्रपति शासन पर तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी है, सरकारी आयोग की इतनी बड़ी रिपोर्ट है और दुनिया भर के बहस है, पार्लियामेंट में बहस है, आप कितना पढ़ेंगे। आपको जो सबसे बड़ा फायदा इससे मिलेगा वो ये कि अभी जो करेंट में जो कुछ भी राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा जा रहा है उसकी जब आप एनालिसिस करेंगे तो उस एनालिसिस के लिए कौन कौन से पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। सच पूछे तो वो उपयोगी पॉइंट्स आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आज की घटना के बारे में एनालिसिस करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया इन पॉइंट्स का उपयोग कर रहा है तो बट नेचुरल है कि एक सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स के रूप में आप भी राष्ट्रपति शासन की घटनाओं के एनालिसिस करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स का उपयोग करेंगे। ये यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इसे इसी रूप में देखें, ये न मान करके चलें कि बस ये तो मिल गया हमारी सारी तैयारी इससे हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। तो दोस्तों आज के करेंट कंटेंट में राष्ट्रपति शासन पर आपको सामग्री प्रोवाइड की गई है, आप लोग उस पर जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। आज मैं आपसे जो पिछले दो दिनों से जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उसी को थोड़ा सा एक अलग तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूं। आज के मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट को आप संपूर्णता का सिद्धांत कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्लीटनेस, होलसेलनेस। संपूर्णता का सिद्धांत कहने का मतलब यह है मित्रों कि जिंदगी में हम चाहे जो कुछ भी करते हैं या खुद हमारी ये पूरी की पूरी जिंदगी ही क्यों ना हो, सच पूछे तो एक होलसेलनेस को, होलसमनेस को लेकर के चलती है, एक कंप्लीटनेस लेकर के चलती है, संपूर्णता को लेकर चलती है। हम अनफॉर्चुनेटली उसको छोटे छोटे हिस्सों में देखने के आदि हो गए हैं। छोटे छोटे हिस्सों में देखने के आदि हम इसलिए हो गए हैं क्योंकि छोटे छोटे हिस्से हमें ज्यादा सूट करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। हम छोटे हिस्सों को पकड़ करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम छोटे हिस्सों को पकड़ते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब हम छोटे हिस्सों को पकड़ते हैं तो हमें अपने आप को ज्यादा फैलाना नहीं पड़ता। तो इन सारी सुविधाओं के लिहाज से हमें छोटे हिस्से ज्यादा सूट करते हैं और हम उन छोटे हिस्सों पर ही काम करने लगते हैं क्योंकि हम छोटे से हिस्से को ही संपूर्ण समझ लेते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर बहुत बड़ी चीज के एक छोटे से टुकड़े को आप वो बड़ी चीज समझ लेंगे या संपूर्ण समझ लेंगे तो आप बताइए कि फिर आपको जो एक कंप्लीट सक्सेस चाहिए वो कैसे मिलेगी। मान लीजिए कि आप शतरंज का बोर्ड देखिए, शतरंज के बोर्ड में खाने खाने बने रहते हैं, चौखाने चौखाने बने रहते हैं और 64 चौखाने होते हैं, 8 × 16 = 32 चौखाने होते हैं, राइट। अब एक चौखाना सच पूछे तो 32 चौखाने को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह का चौखाना एक है उसी तरह के चौखाने शेष 31 भी हैं, यानी कि एक 32 को रिमेनिंग जो 31 है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप सोचें कि यार मैं यदि एक को समझ लेता हूं तो बाकी 31 को भी समझ जाऊंगा और इस तरह से पूरे 32 की समझ मुझे आ जाएगी, तो आप ये बताइए कि क्या आप सही मायने में शतरंज के बोर्ड को पूरी तरह से समझ रहे हैं। पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं, और जब पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पूरी तरह से खेल भी नहीं पाएंगे। मित्र मैंने तो शतरंज का उदाहरण एक चलते चलते दिया है जो मुझे तुरंत अभी ध्यान में आ गया। इसे आप किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे चलिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। और मित्रों मुझे लगता है कि खासकर चाहे हम अभी के जीवन में हो या आगे के जीवन में हम जाएंगे ही, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप कुछ न कर रहे हों, मुझे लगता है कि संपूर्णता के सिद्धांत को न केवल समझना ही जरूरी है बल्कि कहीं न कहीं उसे पूरी तरह से आत्मसात करके अपने अंदर पूरी तरह से समो करके और उसके हिसाब से काम भी करना। और सच पूछे तो जब कोई चीज आत्मसात हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसमें क्षमता होती है कि वो आपको अपने हिसाब से काम करा लेती है, बशर्ते कि हम वैसा कर सके। ज्यादातर मामलों में हम वैसा करते नहीं है क्योंकि हम इतने ज्यादा सुविधा भोगी हो गए हैं कि सारी चीजों को हम अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहते हैं, और जब नहीं कर पाते हैं तो दुनिया भर के लॉजिक, दुनिया भर के तर्क वितर्क कुतर्क दे दे करके अपने को अपराध रहित घोषित कर लेते हैं कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं, गलती तो फलाने फलाने की है, हम क्या करें। मित्रों इसको इस तरीके से समझिए कि जब हम कोई भी काम करते हैं किसी भी रूप में कोई भी चीज हो तो उसकी एक मूल पहचान होती है ना, उसकी एक मेन आइडेंटिटी होती है। चीजें ज्यादा उलझे ना इस रूप में, जैसे कि मैं कहूं कि एक मकान, मान लीजिए कि एक घर है तो घर उसकी मेन आइडेंटिटी है। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बेसिक या मूल रूट आइडेंटिटी क्या है, स्टूडेंट हैं आप, ये आपकी एक मेन आइडेंटिटी है। एक दुकानदार है, दुकान में जा रहा है, दुकान खोल रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी है। इस तरह से आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की एक मेन आइडेंटिटी होती है, और याद रखिए कि ये जो आइडेंटिटी होती है एक मेन होती है लेकिन समय समय पर उसकी आइडेंटिटी बदलती भी रहती है, जो थोड़े समय के लिए बदलती है लेकिन मेन आइडेंटिटी एक ही होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप स्टूडेंट है तो मेन आइडेंटिटी आपकी स्टूडेंट है, लेकिन शाम को आप हो सकता है कि बैडमिंटन खेलने चले जाएं तो वहां आपकी जो आइडेंटिटी है वो स्टूडेंट की नहीं है, वो प्लेयर की है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मेन आइडेंटिटी है वो स्टूडेंट की है। ठीक इसी तरह से अगर कोई कॉलेज का प्लेयर है या नेशनल प्लेयर है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे प्लेयर्स होते हैं जिनको बहुत कंपनीज होती हैं वो नौकरी दे देती हैं, एयरलाइंस रेलवे ये भी उनको नौकरी दे देती हैं, आर्मी उनको नौकरी दे देती है, उनको नौकरी है और उनकी रैंकिंग भी है, उनकी नौकरी के बाकायदे पद नाम भी हैं, लेकिन उनको इस बात की पूरी छूट होती है कि वो अपना पूरा समय खेलने में लगाएं ताकि वो खेल में एक्सेल कर सके, अपना पूरा टाइम अपनी पूरी कैपेसिटी स्पोर्ट्स को दे सकें। तो अब ये इनका पदनाम तो है लेकिन ये इनकी आइडेंटिटी नहीं है, इनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, स्पोर्ट्समैन की आइडेंटिटी हो जाती है। इस बात को मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए, और यदि आपने इस सिद्धांत को मित्रों समझ लिया तो आप देखेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में जब काम करेंगे तो उसका दायरा कितना बढ़ जाएगा, उसका दायरा आपके लिए कितना गहरा हो जाएगा, और सारी चीजों पर आपकी कुछ ऐसी पकड़ बनने लगेगी कि जो चीज आपको बड़ी कठिन लग रही थी, जिस चीज में बार बार एक तरह से फेलियर जैसा लग रहा था, वही चीज अब आपको सरल भी लगने लगेगी और काफी कुछ वह चीज आपको सरलता के नजदीक भी पहुंचा देगी। तो ये इश्यू थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, हो सकता है कि इस पर हमको कल भी बात करना पड़े, कल भी बात करना ही पड़ेगी। तो मैं आपको इसीलिए थोड़े से विस्तार के साथ बताना चाह रहा हूं। अब आखिरी बात आज ये कि आपकी एक मूल आइडेंटिटी होती है और इसके बाद फिर छोटी 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 आइडेंटिटी होती है जो उसी पर्टिकुलर टाइम में हो सकती है या उस टाइम के अलग भी हो सकती है। जैसे एक मकान, चलिए हम निर्जीव वस्तु को लेते हैं, जैसे ही आप एक बिल्डिंग देखते हैं, एक घर देखते हैं, एक मकान देखते हैं तो आप कहते हैं ये क्या है, ये मकान है या ये घर है। मकान, ठीक है, मकान की आइडेंटिटी क्या है, दीवाल और छत, बिना दीवाल और बिना छत के मकान नहीं होती है, कहीं भी आप दीवाल बना दीजिए और छत डाल दीजिए वो मकान बन जाएगा, ये इसकी मेन आइडेंटिटी हुई। तो मेन आइडेंटिटी एक दीवाल की हुई, एक मकान की हुई, दीवाल और छत, राइट। लेकिन उसकी छोटी छोटी आइडेंटिटी क्या है, क्या केवल दीवाल और छत ही मिलकर मकान बना देती है, मकान कहलाने लगेंगे लेकिन उनकी दूसरी छोटी छोटी भी आइडेंटिटी होती है। दरवाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है, खिड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, अलमारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये सब भी उस मकान के हिस्से हैं लेकिन ये उसकी छोटी छोटी आइडेंटिटी है। ये बात अलग है कि ये छोटी भले ही हो लेकिन इन छोटी के बिना वो बड़ी आइडेंटिटी का काम पूरा नहीं होता। तो मित्रों, अभी आपको दिमाग में केवल ये दो बातें रखनी है कि हम सभी की एक बड़ी आइडेंटिटी होती है, जिसे आप बेसिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, मूल आइडेंटिटी कह सकते हैं, और इसके बाद फिर हमारी छोटी छोटी आइडेंटिटी होती है जो हमारी इस मूल आइडेंटिटी को सपोर्ट करती है। अब हमसे चूक कैसे होती है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अब कल के लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में बात करेंगे। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट वाला हिस्सा आज यही समाप्त होता है। अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। दोस्तों, कुछ ऐसा अद्भुत सा संयोग हो रहा है कि इस सप्ताह न्यूज में कुछ ऐसा मामला मिल नहीं रहा है जिसको लेकर के मैं आप लोगों से एक लंबी बातचीत कर सकूं, लेकिन मैं तो ये मान करके चलता हूं कि अगर कोई खाद भी है, कोई चीज सड़ भी रही है, तो वो भी बेकार नहीं है, उसका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ न कुछ चीजें तो 15 मिनट की न्यूज है और हमारी नेशनल न्यूज है, तो कुछ न कुछ तो हमारे लिए चीजें निकल ही सकती हैं, निकल ही जाती हैं, कोई खींच तान कर निकालने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी अपनी दृष्टि को थोड़ी सी तीक्ष्ण रखना पड़ती है। और न्यूज में कुछ नहीं, अब आप देख रहे हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का मामला चल रहा है, विजय माल्या का मामला चल रहा है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं और ये सब अभी चलती रहेंगी, ये अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। सिविल सर्विस के लिहाज से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लगी और जिसके माध्यम से मैं कुछ आपको दूसरी बातें भी करना चाहूंगा, वो थी प्याज। प्याज के मामले को देखिए दोस्तों, प्याज हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये 1997-98 की बात होगी, 98 की शायद बात है, उस समय प्याज की कीमत बहुत बढ़ी थी, बहुत ज्यादा बढ़ी थी, मतलब 98 में सोचिए, मुझे अच्छे से याद है कि प्याज 50-60 रुपए किलो बिकने लगा था। उस समय गवर्नमेंट ने फिर सारे अपने उपाय किए थे और उस समय फिर जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, सरकार के राज्य सरकार के चुनाव हुए थे, तो क्योंकि प्याज के आधार पर ही जो सरकार उस समय सत्ता में थी वो हार गई, क्योंकि प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। आपने प्याज के बारे में खबर सुनी कि सरकार कह रही है कि वो 15 रुपए किलो प्याज खरीदेगी या 5 रुपए, जरा सा डेटा आप देख लीजिएगा, खरीदेगी, जबकि बाजार में 2-3 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, खरीदा जा रहा है। दोस्तों, ये प्याज को लेकर के मुझे लगता है कि आप पूरे के पूरे हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सिनेरियो है और जो फार्मर्स, जो किसानों की स्थिति है, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही मैंने प्याज के बारे में कुछ खबरें पढ़ी थी जो अखबारों में आई है। हालत यह हो गई है कि प्याज 50 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है, 8 आने किलो, और किसान के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने गांव से प्याज ट्रैक्टर में भर करके लाता है, जो ट्रैक्टर का किराया होता है आने जाने का, वो तो दोनों का किराया लेता है, वो होता है 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक, जितनी दूर ट्रैक्टर उसकी दूरी के हिसाब से होता है। अब वो एक ट्रैक्टर अपना प्याज भर करके लाता है पूरे ट्रॉली में, और जब यहां बेचता है तो पता लगता है कि जो ट्रैक्टर वाले को भुगतान करेगा, ट्रॉली वाले को भुगतान करेगा, उसमें भी उसे अपने पल्ले से कुछ देना पड़ेगा। ये हालत हो गई है प्याज की, और ये एक पहले साल, इसी साल की बात नहीं है, ये लगभग हर साल होता है। आप खबरों पर जरा सा गौर कीजिएगा तो हर साल आपको इस तरह की दुखद, बेहद दुखद और सच पूछे तो शर्मनाक खबरें आपको पढ़ने को मिलेंगी। मजेदार बात यह है कि बेचारा किसान को अभी 50 पैसे किलो में प्याज बेचना मुश्किल हो रहा है, और आप देखेंगे 6 महीने के बाद कि इसी प्याज को हम 30-40 रुपए किलो खरीदेंगे, इसी प्याज को हम 30-40 रुपए किलो खरीदेंगे। मित्रों, ये क्या हो रहा है? क्या, हालांकि इकोनॉमिक्स में आप सब, हम सब यही पढ़ते हैं कि जो वस्तु का मूल्य का जो निर्धारण होता है वो डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी पर होता है। ठीक है, अभी प्याज की सप्लाई ज्यादा हो रही है क्योंकि अभी प्याज पैदा ही हुआ है, मंडी में ज्यादा प्याज आ रहा है, उसकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड तो प्याज की बढ़ी नहीं है, डिमांड तो ज्यों की त्यों है, तो ऐसी स्थिति में प्याज की कीमतें कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कम हो जाए कि प्याज की जो लागत है वो भी वसूल ना हो? क्योंकि आप फिर वस्तु के मूल्य के निर्धारण में ये भी पढ़ते हैं कि जो बेचने वाला है उससे कम में नहीं बेचना चाहेगा जितनी उसकी लागत आई है। तो अब बेचारा किसान क्या करे? किसान की मजबूरी को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए, और आप में से बहुत से श्रोता तो किसान होंगे, किसान के बेटे होंगे, उन अपने पिता के इस दर्द को और खुद उस दर्द को महसूस कर रहे होंगे कि क्या स्थिति होती है। किसान यहां मजबूर इसलिए है क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकता, उसके पास स्टॉक रखने के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है नहीं जहां वो इन्हें रख सके, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, और यदि कोल्ड स्टोरेज है भी थोड़ी बहुत, तो सवाल यह कि वो मंडी में लेकर के आ चुका है प्याज, लेकर के जाएगा तो उसका फिर से वो प्याज उसके लिए महंगा हो जाएगा। मंडी के का जो भुगतान करेगा वो हर महीने किराए का भुगतान करेगा, और दूसरी बात कि उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो प्याज को रोक सके, क्योंकि जो उसने प्याज लगाते समय जो खाद लिया, जो कर्ज लिया, जो बीज लिए, वो जो साहूकार है या वो जो एजेंसी है, बैंक है, वो तो उनसे तुरंत भुगतान मांगे कि भैया तुम हमारा ऋण चुकाओ। अब वो ऋण कैसे चुकाएगा, और अगर वो ऋण नहीं चुका रहा है, उधर उसका ब्याज दे रहा है जो पैसा उसने लिया है, इधर वो अपना प्याज जो उसने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है वो उसका किराया दे रहा है, और आगे चल करके पता नहीं प्याज के दाम कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, ये आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये किसान की मजबूरी है। और इधर जो 50 के पैसे किलो प्याज ले रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है कि आप किस तार्किकता के आधार पर 50 पैसे किलो प्याज ले रहे हैं, आप पैदा करके देखा है आपने कभी? आप 50 पैसे किलो लेकर के इस बात की गारंटी देते हैं कि साल भर तक आप 4 गुना रेट ले लीजिए कि उपभोक्ता को 2 रुपए किलो पर साल भर आप प्याज उपलब्ध कराएंगे, 6 गुना ले लीजिए, 10 गुना ले लीजिए कि हम 5 रुपए किलो से अधिक इसकी कीमत नहीं बढ़ने देंगे, क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं? ये क्या हो रहा है? इसी को कहा जाता है दोस्तों फ्री मार्केट या कैपिटलिज्म। ये जो विश्व उदारीकरण है जिसको हम कहते हैं, ये मार्केट पर आधारित, मतलब फ्री मार्केट पर आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये मान करके चलता है कि जो बाजार है, बाजार की जो शक्तियां हैं वो खुद ही सारी चीजों का मूल्य निर्धारण करेंगी। डिमांड सप्लाई की थ्योरी काम आएगी, क्वालिटी की थ्योरी काम आएगी, मूल्य की थ्योरी काम आएगी, जो सस्ते में होगा वो बिकेगा, जो क्वालिटी अच्छी होगी वो बिकेगी, महंगी चीज ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी। बाजार इन बातों को कहती है, आज का आर्थिक सिद्धांत इन बातों को कहता है, लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो क्या सच में उदारीकरण के इस नीति को, इस मूल आर्थिक सिद्धांत को काम करने देती है? जैसे एपीएमसी के बारे में आपने सुना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी है जो हर राज्यों में है, जो समितियां बनी हुई हैं, जो पूरे के पूरे मंडी को कंट्रोल करती हैं, उनकी वजह से किसानों की कितनी दुर्गति हो रही है, क्योंकि वो लाइसेंस होल्डर ही वहां एजेंट सामान खरीद सकते हैं, और ये जो लाइसेंस होल्डर जो 10-15 लोग हैं आपस में समझौता कर लेंगे कि भैया प्याज 8 आने किलो से ज्यादा खरीदो मत, ये किसान झक मारकर बेचेंगे, उनको क्या लेना देना है कि किसान को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, वो आत्महत्या करेगा कर्ज में डूबेगा, उनको कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है उसकी एक कह लीजिए असंवेदनशीलता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। ये आलोचना की जाती है पूंजीवादी व्यवस्था की, और इसे आपको इस तरीके से इनलार्ज करके इस इशू को देखना होगा। ऐसे में क्या किया जाए मित्रों? ऐसे में सरकार जो कर सकती है, अब आप उसको देखिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अगर पूंजीवादी व्यवस्था में रहे, फ्री मार्केट एज में रह रहे हैं, तो हम बिल्कुल लाचार ही हैं। दो चीजें आप ध्यान दीजिए, पहला तो यह है कि इस बार सरकार ने ही इस बात की घोषणा की है कि वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एस्टैब्लिश करने जा रही है, और उसने काम करना शुरू भी कर दिया है, जिसको उन्होंने नाम कहा है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये ऑनलाइन मार्केट है जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह का किसान जब वहां मंडी में बेचने जाता है तो उसको 50 पैसे किलो प्याज की कीमत मिलती है, लेकिन ऑनलाइन पर पूरे देश में एक कलकत्ता का जो व्यापारी है वो उसी प्याज को 5 रुपए किलो में खरीदने को तैयार है, वो ऑनलाइन उसे बेच सकता है, जो आप amazon.in और फ्लिपकार्ट वगैरह के काम देख रहे हैं, तो वहां उसका प्याज चला जाएगा। तो जब वहां प्याज बेचेगा तो यहां जो 50 पैसे में खरीदने वाला है, मालूम है कि वो उसको प्याज नहीं मिलेगा 50 पैसे में, क्योंकि किसान तो 5 रुपए में वहां जाकर के बेच देगा, तो वो फिर ऑटोमेटिक यहां अपने प्याज की कीमत बढ़ाएगा, भले ही वो 5 रुपए में न ले, क्योंकि उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन की कीमत घट जाएगी, 4 रुपए में तो खरीदेगा, तो किसान कुछ तो सुरक्षित होगा। ये सरकार पहला कर रही है। दूसरा, सरकार की तरफ से जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, कि सरकार ये कहती है कि हम आपको, जैसे सरकार ने कर दिया 5 रुपए किलो कि प्याज की कीमत 5 रुपए प्रति किलो की न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, अपेक्षा करता है करती है सरकार कि मार्केट इस रूप रेट में प्याज खरीदेगा। फिर सरकार एश्योर करती है किसानों को कि यदि आपका प्याज इस रेट पर नहीं बिक रहा है तो हम खरीदने की गारंटी देते हैं, आप हमारे पास आइए और हम आपको 5 रुपए किलो की कीमत देंगे। ये सरकार का दूसरा मैकेनिज्म है। अब सवाल ये है मित्रों, जहां सरकार थोड़ी सी कमजोर पड़ती है या जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, कि सरकार कहती तो है लेकिन क्या उसके पास इस तरह का तंत्र है, उस तरह की फैसिलिटी है कि वो उतना प्याज खरीद सके जितना हमारा उत्पादन हो रहा है? सरकार के पास तंत्र तो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पूरे देश में इसका संजाल बिछा हुआ है, इसके पास अपने गोडाउन है। ये बात अलग है कि गोडाउन की संख्या बेहद कम है, मतलब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का हार्डली 1/3 गोडाउन हमारे पास है अनाजों के लिए। इसीलिए आप अक्सर आप न्यूज में सुनते हैं कि साहब वहां इतना गेहूं सड़ गया, वहां इतना धान सड़ गया, वहां रेलवे स्टेशन के बाहर वो पड़ा हुआ है, ये हम सुनते रहते हैं। हमारे पास गोडाउन की बेहद कमी है। और फिर प्याज जैसी चीजों को तो आप सीधे गोडाउन में भी नहीं रख सकते, इस चीज के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज की बेहद कमी है। तो जब तक हम इसके लिए सही मायने में एक सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं कराएंगे, तब तक ये हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो आधार है वो भी बहुत सॉलिड तरीके से काम नहीं करेगा। और अगर जिस तरह से सरकार ने 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी को दुगना करने का वायदा किया है, जब तक ये आधारभूत संरचना ठीक नहीं की जाती, तब तक इसे सच पूछिए तो वायदे को पूरा कर पाना संभव नहीं दिखाई देता। तो मित्रों, ये प्याज को लेकर के मैंने थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात की है, क्योंकि न्यूज में आज बात करने के लिए और कोई विषय नहीं था और मुझे ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच के स्टूडेंट्स को कि उनको पिछले सप्ताह जो स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया गया है वो नाम पर किया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पर किया गया था, और फिर इंटीग्रेटेड जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर किया गया था। उसके उनको चाहिए कि इस प्याज वाले न्यूज को जो उनको प्रोवाइड किया गया है स्पेशल ऑडियो, उस पर अप्लाई करके देखें, जिसका हिंट मैंने थोड़ा सा अपने अभी के एड्रेस में दिया है, तो उनको ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, न्यूज के बारे में इतना ही। आज अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर्स की कुछ आज बहुत अच्छी क्लिपिंग्स है फ्रेंड्स। एक जो सबसे अच्छी क्लिपिंग्स है, सबसे अच्छी इन द सेंस कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स है, वह है पानी पर केंद्र सूची, पानी पर केंद्र सरकार आप कह लीजिए, इसका टाइटल ही है पानी पर केंद्र के हक में ही राष्ट्र हित। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपको भास्कर के कुछ चीजें प्रोवाइड की थी, दैनिक भास्कर का एक आइटम प्रोवाइड किया था, फ्रंट पेज न्यूज छपी थी कि हमारी जो लोकसभा की जो संसदीय समिति है, जल संबंधी जो स्थायी समिति है, उसने एक रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट में उसने कहा था कि जो जल जो विषय अभी राज्य सूची में शामिल है उसे समवर्ती में शामिल कर देना चाहिए ताकि केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाए। और फिर आपने देखा कि उसमें डिटेल में दिया हुआ था कि जो समवर्ती सूची में आने के बाद कैसे केंद्र के अधिकार बढ़ जाएंगे, राज्यों के अधिकार कैसे कम हो जाएंगे, और यदि सरकार को यह समवर्ती सूची में इस विषय को शिफ्ट करना होगा तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में डिटेल्स में कल सब कुछ बताया हुआ था। इसीलिए मैंने वो क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की थी, हालांकि उस पर मैंने डिटेल में बात नहीं किया था, मुझे मालूम था कि अब ये सब्जेक्ट इश्यू बनेगा, इस पर चीजें आएंगी। दोस्तों, सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में ये इस दृष्टि का होना मुझे लगता है आप लोगों में थोड़ा सा जरूरी होगा कि आज जो घटना घट रही है, हो सकता है कि वो छोटी सी चीज हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपकी दृष्टि को ये पकड़ में आ जानी चाहिए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये छोटी सी दिख रही है लेकिन आगे ये जाकर के बड़ी बनेगी। अगर बड़ी नहीं भी बनती तो सिविल सर्विस की दृष्टि से तो मेरे लिए ये बड़ी है ही। आज दैनिक भास्कर में उस पर जो विराग गुप्ता हैं उनका एक डिटेल में आर्टिकल छपा है, वह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसे डिटेल में बताने की जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानते हुए आप लोग इसे जरूर पढ़ें। एक बहुत ही छोटी सी जो खबर थी मित्रों, कल मैं उसकी चर्चा नहीं कर पाया था, मैं सोच रहा था कि आज शायद इस पर कुछ बात हो, और वो है कि एक खबर आई है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि जो 2015-16 में जो रूरल बैंकिंग है, मतलब रूरल क्रेडिट आप कह लीजिए कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, उन्होंने जो बैंकों से उनको जो कर्ज मिलता है उसमें कल्पना करके देखिए कि 2015-16 में 40% इंक्रीज हुआ है, 40%। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, वीमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे साइन हैं। आप अगर 3 साल के पिछले जनरल स्टडीज मेंस के पेपर उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं से सेल्फ हेल्प ग्रुप के संबंध, उनके सशक्तिकरण, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो केंद्र है, डेफिनेटली बैंकों से मिलने वाला ऋण है, और इसमें अगर 40% वृद्धि हुई है तो एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा लक्षण है। तो इसे आप केवल ध्यान में रखिएगा, बस एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि ग्रामीण ऋण में खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों 3 आर्टिकल और हैं, एक तो उत्तराखंड में के जंगलों में जो भी आग लगी है उसको लेकर के मृणाल पांडे जी का आर्टिकल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको खासकर मतलब परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि उत्तराखंड के आग के संदर्भ में उत्तराखंड के पर्यावरण की चर्चा हो गई है, लेकिन पर्यावरण भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इश्यू है और कहीं ना कहीं पर्यावरण वहां की आग लगने की घटना से जुड़ी हुई भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो उससे बिल्कुल अलग है। तो आप उन दोनों लिहाज से पढ़िएगा, आग लगने का कारण और दूसरा वहां जो पर्यावरण को किस तरीके से क्षति पहुंच रही है। दूसरा जो आर्टिकल दोस्तों वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, खासकर हेल्थ सेक्टर का है और हेल्थ सेक्टर सिविल सर्विस के लिहाज से जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने बताया है कि बताने की कोशिश की है कि जो किरण मजुमदार शाह हैं, जो आपको मालूम होगा कि वो बायकॉन जो बहुत बड़ी कंपनी है बायकॉन उसकी चेयरमैन है, कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर में सरकार खासकर पीपीपी के मॉडल से अच्छा काम कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से ही हम पब्लिक हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। और एक आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, वो खासकर कि जो लगा भारत में समय समय पर जो सूखा पड़ता रहता है तो उससे कैसे एक स्थायी समाधान उसका निकाला जा सकता है, ये आर्टिकल से ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप लोग देख लेंगे। मित्रों न्यूज़पेपर्स से इतना ही, अब मैं आता हूं आज कल के मेल पर। काफी मेल मिले हैं, मेल लिखने वाले सभी अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही मित्रों मैं एक दो अनुरोध भी आप लोगों से करना चाहूंगा, दो अनुरोध विशेष रूप से, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि प्लीज पहले तो बहुत लंबे मेल ना लिखें, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के मेल मुझे मिल रहे हैं और मान करके चलिए कि अगर आप लंबा मेल लिख रहे हैं तो आप अपने मन की बात तो कह ले रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मेल फिर लंबा होने के बाद भी फिर वो बहुत छोटा हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। बहुत से स्टूडेंट हैं आखिरी में कहेंगे कि मैंने मेल लिखा इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि सच में क्षमा करने की बात कर रहे हैं आप, मतलब कोई गलती कर रहे हैं, तो बेहतर है कि उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और ये बिल्कुल मत भूलिए, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैं अपनी बात संक्षिप्त में नहीं कह सकता, ये इस गलत फहमी में आप मत रहिए, आप अपनी बात को संक्षिप्त में कह सकते हैं बशर्ते कि कोशिश कीजिए। आपने कोशिश ही नहीं की, आप अपनी बात नहीं कहते, आप कहानी सुनाने लगते हैं और उस कहानी सुनाने के प्रोसेस में वो चीज लंबी हो जाती है। तो प्लीज बहुत लंबे मेल न लिखें। और दूसरी बात दोस्तों कि हम डेली ऑडियो के बेस पर काम कर रहे हैं, जैसे ये नेट पर डलेगा मैं मान करके चलता हूं कि वो आप तक पहुंच चुका है, नेक्स्ट डे फिर से दूसरा ऑडियो आएगा। हम एक दिन में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक टेकअप करते हैं तो उस टॉपिक की एज समय कितनी होगी, एक दिन, दो दिन या एक सप्ताह, कितने समय तक उस पर मेल लिखे जाने चाहिए? मुझे लगता है कि हार्डली 2 दिन तक, इसके बाद वो टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, फिर नया टॉपिक पकड़िए। भारत ने कब वो सैटेलाइट छोड़ा था नाविक वाला, उस पर मैं क्लेरिफिकेशन दे चुका हूं कि इस आप लोग अपने अपने तरीके से देख लीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी भी कई कई मेल मेरे पास उसके क्लेरिफिकेशन के आ रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब वो आप लोग अपने लेवल पर देखिए, अपने लेवल पर चलाइए, उसको कीजिए और नई चीज पर आइए ना, रोज नई नई चीजें हो रही हैं। मेल लिखने के लिए मैं रोज नई नई चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, करंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, लाइफ मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, AIR न्यूज से टॉपिक दे रहा हूं, अखबारों के एनालिसिस कर रहा हूं, कितनी सारी चीजें की जा रही हैं, उन पर भी सोचिए ना, उन पर बात कीजिए, पुरानी चीजों को छोड़िए। अब वो समय नहीं रह गया कि एक फिल्म लगी है और पता लगा कि वो साल भर तक टॉकीज में चल रही है, एक सप्ताह अगर कोई फिल्म चल जाए तो वो बहुत भाग्यशाली फिल्म है, बहुत सुपरहिट फिल्म है, हम उस एज में रह रहे हैं। तो प्लीज अगर कोई भी टॉपिक डेली ऑडियो में आ जाता है तो उसकी लाइफ को आप मैक्सिमम 2 दिन तक रखिए। 2 दिन तक मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के ऑडियो को हो सकता है आज आप न सुन सके हो, अगर सुना भी हो तो रात में सुना हो, या आप कल तो सुन ही लेंगे, कल सुनने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया कल तक भेज दीजिए, और यदि कल तक प्रतिक्रिया आप नहीं भेज पाए हैं तो फिर उसे भूल जाइए, मतलब फिर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज तो आपके दिमाग को परेशान करेगी, आपके दिमाग को मथेगी। तो प्लीज मेल के बारे में ये सिद्धांत अगर आप अपनाएंगे तो हम इस मेल का भी बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकेंगे। तो मित्रों, सभी मेल लिखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं: सौरभ कुमार मिश्र इलाहाबाद से, ब्रह्म प्रकाश लखनऊ से, परविंदर कुमार लुधियाना से, शांता कुमारी केवटी दरभंगा बिहार से, सावन नयन, कृपेश कुमार अहमदाबाद से, हेमंत कुमार, सुमित कुमार और आशीष कुमार भागलपुर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।